بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ پویتر قرآن کے سورہ انفال کی دوسری، تیسری اور چوتھی آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری ہوشنگ محمد یون۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، لهم مغفرة ورزق كريم، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیں، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں، क्षमा और सम्मानित आजीविका है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है और कमर अब्बास का सलाम स्वीकार करें। श्रोताओ, हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 41 मीटर बैंड बराबर 7,445 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। आज शुक्रवार है, आबान की 16, नवंबर की 6 और रबी अव्वल की 20 तारीख। हमारी इस समय की सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा नोट कर लें। सबसे पहले आप समाचार सुनेंगे, उसके बाद दैनिक कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा पेश किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के बाद आप अपने पत्रों पर आधारित कार्यक्रम पत्र संसार सुन सकेंगे और सभा के अंत में हम आपकी सेवा में अपना साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान की डगर पेश करेंगे। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारे आज की इस समय की सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा और अब से कुछ ही देर में आप रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब पेश है समाचार। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान और वेनेजुएला ने परस्पर संबंधों में विस्तार पर बल दिया। ईरान ने कहा है कि इस्लामी जगत पश्चिमी तट के विलय की अनुमति कदापि नहीं देगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में विवाद जारी, बाइडेन जीत के बेहद करीब पहुंचे। और भारत में उत्तर प्रदेश सरकार ने सीए और एनआरसी प्रदर्शनकारियों को इश्तिहारी मुजरिम घोषित किया। और अब आप विस्तार से समाचार सुने। विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा है कि वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय और आपसी रुचि के विषयों पर विचार विमर्श किया गया। फास्ट न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने लैटिन अमरीकी देशों की अपनी यात्रा के दौरान पहले काराकास का दौरा किया और उन्होंने अपनी यात्रा की समाप्ति पर ट्वीट करके कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उपराष्ट्रपति रोड्रिग्स और विदेश मंत्री खोर्खे अरिजा और अन्य मंत्रियों के से द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर चर्चा की गई। इसी मध्य वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने ईरानी विदेश मंत्री के दौरे को दोनों देशों के मजबूत रणनीतिक संबंधों का चिन्ह करार दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ईरान और वेनेजुएला के रणनीतिक संबंध और सहयोग और अधिक मजबूत होंगे। ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडर का कहना है कि किसी भी प्रकार के सीमा पर खतरे का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आईआरजीसी के कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने अर्दबिल प्रांत के सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे के दौरान कहा कि स्थायी सुरक्षा हमारी रेड लाइन है और सीमा पर पैदा होने वाली किसी भी प्रकार की अशांति और खतरा जिससे हमारे देश के निवासियों की शांति भंग हो जाए अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि कराबाख घटना पर हम गहरी नजर रखे हुए हैं और हमने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। जनरल सलामी ने कहा कि काराबाख क्षेत्र में जारी झड़पों की वजह से उससे लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को हमेशा चौकस रहने का निर्देश दिया गया है। जनरल सलामी ने कहा कि ईरानी राष्ट्र ने बहुत कठिनाइयां सहन की हैं और अब वे प्रतिष्ठा के इच्छुक हैं। उनका कहना था कि ईरानी राष्ट्र दुश्मनों के षड्यंत्रों और खतरों से मुकाबले में सीसा पिलाई दीवार की तरह डट जाएंगे। ईरान में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कोरोना संक्रमण के 8,000 से अधिक नए मामलों और गत 24 घंटों में 424 बीमारों की मौत की सूचना दी है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता सीमा सादात लारी ने शुक्रवार को देश में कोरोना के ताजा आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया है कि गत 24 घंटों के दौरान 8,864 नए बीमारों की पहचान की गई है, जिनमें से 3,234 मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए, जबकि बाकी को आरंभिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ईरान में कोविड 19 के कुल संक्रमितों की संख्या 6,63,800 तक पहुंच गई है और पिछले 24 घंटों में कोविड 19 के 424 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद इस बीमारी से ईरान में मरने वालों की कुल संख्या 37,409 तक पहुंच गई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता सीमा सादात लारी के अनुसार अब तक 5,09,952 रोगी कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। पूरी दुनिया में भी कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 4,90,00,000 से अधिक हो चुकी है, जिनमें से कम 12,40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलिस्तीनी आंदोलन के समर्थन के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के महासचिव ने फिलिस्तीनियों के घरों को इसराइल द्वारा ध्वस्त किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस्लामी जगत और फिलिस्तीनी प्रतिरोध मोर्चा पश्चिमी तट पर कब्जे और उसके विलय की अनुमति नहीं देगा। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने शुक्रवार को कहा कि इसराइल पश्चिमी तट के गांवों और इलाकों का बड़ी खामोशी से विलय कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ज़ायनी शासन के दुस्साहस कुछ अरब देशों की गद्दारी की वजह से जारी है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने इसी प्रकार पश्चिमी तट के हमसा अलबाकिया गांव को तबाह करने और 31 से 41 बच्चों सहित दसियों परिवारों को बेघर किए जाने को फिलिस्तीनियों का बलपूर्वक विस्थापन बताया, जो वास्तव में ज़ायनियों का मानवता विरोधी अपराध है। उन्होंने कहा कि जिन अरब देशों ने इसराइल से हाथ मिलाया है वो इन अपराधों में उसके भागीदार हैं। अमीर अब्दुल्लाहियान ने इसराइल को चेतावनी दी है कि निश्चित रूप से इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा और इस्लामी राष्ट्र अवैध कब्जा करने वालों को असहाय बनाए देगा और फिलिस्तीन के सभी अवैध अधिकृत इलाकों को आज़ाद करा लेगा। उन्होंने इस्लामी देशों के संसदों, समाजसेवी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और फिलिस्तीन के समर्थकों से अपील किए गए ज़ायनियों के इस अतिक्रमण की आलोचना करें। याद रहे, ज़ायनियों ने मंगलवार को पश्चिमी तट के हमसा अलबाकिया गांव को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद इस गांव के 41 बच्चों सहित 73 ग्रामीण बेघर हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ की वरिष्ठ अधिकारी एवान हेली ने कहा है कि इसराइल ने सन 2020 में फिलिस्तीनियों के सबसे ज्यादा घर ध्वस्त किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इसराइल से मांग की है कि फिलिस्तीनियों के घरों को गिराना बंद करे। इस्लामी गणतंत्र ईरान के एक सांसद ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की संभावित पराजय की वजह जनरल शहीद कासिम सुलेमानी की हत्या करार दिया है। ईरान की संसद मजलिसे शुरा इस्लामी में तेहरान के सांसद मुश्तबा रजा खान ने अपने ट्विटर पेज पर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या ट्रंप की पराजय का कारण 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत की एक वजह मिशिगन राज्य में उन्हें मिलने वाले वोट थे, किंतु इस बार मिशिगन के शिया मुसलमानों ने, जिन्होंने शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या पर गहरा रोष जताया था, इस बार पूरी एकजुटता के साथ ट्रंप के विरुद्ध उठ खड़े हुए और मिशिगन राज्य में बल्कि पूरे अमरीका में ट्रंप की संभावित पराजय की भूमिका प्रशस्त कर दी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मत गणना जारी है और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन बहुमत के आंकड़े से काफी निकट पहुंच गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के फाइनल परिणाम आने में अभी समय लगेगा, किंतु ट्रंप ने अपनी जीत का एक बार फिर दावा किया है। इलेक्ट्रोलर वोट में बाइडेन 264 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को केवल 214 वोट मिले हैं। मतगणना के बीच एक बार फिर से व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत का दावा किया और विरोधियों पर वोट चुराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर वैध वोटों की गिनती की जाए तो चुनाव में जीतूंगा। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर आप कानूनी वोटों को गिनोगे तो मैं आराम से जीत रहा हूं, मगर आप गैर कानूनी अर्थात मेल इन बैलेट्स वोट गिनेंगे तो डेमोक्रेट इसके द्वारा हमसे जीत छीनने की कोशिश कर सकते हैं। मैं पहले ही कई बड़े राज निर्णायक अंतर के साथ जीत चुका हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा मानना है कि हम ये चुनाव काफी आसानी से जीत जाएंगे, हालांकि इसमें कोर्ट के चक्कर काफी लगाने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास काफी सबूत है और शायद इसका अंत देश की सबसे बड़ी अदालत में होगा। हम एक चुनाव की कोई इस तरह चोरी नहीं होने देंगे। अमरीकी सरकार लेबनान के पूर्व विदेश मंत्री पर प्रतिबंध लगाने की इरादा रखती है। मीडिया सूत्रों ने इस कार्रवाई को हिजबुल्ला पर वॉशिंगटन के दबाव की परिधि में करार दिया है। فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے انوسار میڈیا سوتروں نے بتایا ہے کہ امریکہ کا ٹرمپ پرشاسن شکرائے کو لبنان کے پورو ودیش منتری جبران باسل پر پرتیبندھ لگا دے گا. وال اسٹریٹ جرنل نے بھی اس خبر کا الیکھ کرتے ہوئے کہا کہ ان پرتیبندھوں کا لکش حزب اللہ کی شکتی کو سیمت کرنا ہے. ایک امریکی ادھیکاری نے اس سماچار پتر سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ پرشاسن حزب اللہ کی مدد کرنے کی وجہ سے جبران باسل پر پرتیبندھ لگانے کی تیاری کر رہا ہے. ایک امریکی کمانڈر نے کہا کہ افغانستان میں امریکی حملے جاری رہیں گے. امریکی سینٹ کمانڈر جان ریڈرک نے طالبان کی ہنسا کے بہانے افغانستان کے وبھن علاقوں میں امریکی حملوں کا اوچت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی سینا کے حملے جاری رہیں گے اور ہمارے ڈرون ویمان طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے رہیں گے. امریکہ اسی دشا میں افغانستان میں حملے جاری رکھنے کی بات کر رہا ہے جب قطر میں طالبان کے ساتھ اس کی شانتی وارتا میں امریکہ نے وچن دیا تھا کہ افغانستان میں امریکی سینکوں کی سنکھیا کم کی جائے گی اور طالبان کے ٹھکانوں پر حملے بند کیے جائیں گے. ناگرکتا سنشودھن قانون سی اے اور راشٹریہ ناگرک رجسٹرار این آر سی کے ورودھ میں پردرشن کرنے والوں کو بھارت کی اتر پردیش سرکار نے فرار گھوشت کر کے ان کی گرفتاری کے لیے نقدی انعام کا اعلان کیا ہے. اتر پردیش کی یوگی سرکار کا دعویٰ ہے کہ پردرشنکاری لمبے سمے سے فرار چل رہے ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے انعام کا اعلان کیا گیا ہے. 14 فرار پردرشنکاریوں میں سے 8 پردرشنکاریوں پر گینگسٹر ایکٹ کے تحت کاروائی کر وانٹیڈ گھوشت کیا گیا اور ان کے گھروں کے باہر نوٹس لگائے گئے ہیں. ان پردرشنکاریوں کو لے کر کئی جگہ پوسٹر بھی لگائے گئے ہیں. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے.
یہ تہران ہے اسلامی گانتنتر ایران کی آواز.
راجنیتک چرچا.
شوتو راجنیتک چرچا کے دینک کارکرم میں محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے. یمن کی راجدھانی سنا میں شہید سلیمانی نام کے فارسی بھاشا کا شکشا چرن سماپت ہونے کی خوشی میں ایک جشن آیوجت کیا گیا. اس اوسر پر فارسی بھاشا میں اتریڑ ہونے والے چھاتر اور چھاتراؤں کو سمانت بھی کیا گیا. یمنی چھاتروں کو فارسی بھاشا سکھانا ایران اور یمن کے سمبندھوں کو مضبوط بنائے جانے کی دشا میں ایک مہتوپورن قدم ہے.
دفعۃ تخرج طلابیہ تحمل
امریکہ میں جہاں مت گڑنا جاری ہے وہیں ٹرمپ اور بائیڈن کے سمرتھکوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہیں. اسی بیچ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے وجیتا ہونے میں کوئی سندیہ نہیں ہے. جانکار حلقوں کا کہنا ہے کہ امریکی سماج ہنسا روپی جوالا مکھی کی اور بڑھا ہے.
And he wants to take everybody down with him, including this country.
بھارت نیتت کشمیر کی پورو مکھی منتری محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بھارت کی کیندر سرکار نے کشمیر کے سمبندھ میں جو کچھ کیا ہے وہ اسے نہ تو سویکار کرتی ہیں نہ کریں گی.
اتنا ڈرتے ہیں کہ یہ بی ڈی پی اگر کہیں پیسفل پروٹیسٹ بھی کرنا چاہے تو پہلے ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں, جیل میں ڈال دیتے ہیں.
یمن کی راجدھانی سنا میں شہید سلیمانی نام کے فارسی بھاشا کا شکشا چرن سماپت ہونے کی خوشی میں ایک جشن آیوجت کیا گیا. اس اوسر پر فارسی بھاشا میں اتریڑ ہونے والے چھاتر اور چھاتراؤں کو سمانت کیا گیا. یمنی چھاتروں کو فارسی بھاشا سکھانا ایران اور یمن کے سمبندھوں کو مضبوط بنائے جانے کی دشا میں ایک مہتوپورن قدم ہے. عبداللہ یوسفی کی رپورٹ پیش کرنے ساتھ ہی اختر عباس.
یمن کی راجدھانی سنا میں شہید سلیمانی نامک فارسی بھاشا کا شکشا چرن سماپت ہونے کی خوشی میں ایک جشن آیوجت کیا گیا. اس جشن میں پاس ہونے والے 22 چھاتر چھاتراؤں کو سمانت کیا گیا. ان چھاتروں نے ایسی حالت میں فارسی بھاشا کی شکشا پوری کی جب حملہور دیش سنا میں اچھ شکشا کو بند کرانے اور ایران تتھا یمن کے بیچ پرگاڑ ہوتے سانسکرتک سمبندھوں کو روکنے کی چیشٹا میں ہیں۔ ایک یمنی چھاترا کہتی ہے کہ میں اس جشن میں ان لوگوں کے پرتی آبھار ویکت کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس سمبندھ میں ہماری مدد کی۔ میں نے یمن اور ایران کے مدھیہ سانسکرتک سمبندھوں کے مضبوط بنائے جانے کی دشا میں فارسی بھاشا کا چین کیا ہے۔ ایک یمنی ناگرک کہتا ہے کہ یہ بہت اچھا جشن ہے، اس سے پہلے اس پرکار کے جشنوں کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یمنی چھاتروں کو فارسی بھاشا کی شکشا دینا اسلامی ایکتا کی دشا میں ایک قدم ہے۔
اللغت الفارسیۃ التی یحملھا ھؤلاء،
ان چھاتروں نے جو فارسی بھاشا سیکھی ہے وہ ایران اور یمن کے مدھیہ ایتیہاسک سمبندھوں کے پرگاڑھ بنائے جانے کی دشا میں ایک مہتوپورن قدم ہے۔ فارسی بھاشا میں پاس ہونے والا ایک یمنی چھاتر کہتا ہے کہ دونوں دیشوں کے سمبندھوں کو گہن و پرگاڑھ بنانے کی دشا میں یہ ایک اہم قدم ہے۔
فی تعزیز العلاقات و تبادل،
ایک یمنی ناگرک کہتا ہے کہ کئی ہزار سال پرانی سبھیتا والے دیش ایران کے ساتھ سانسکرتک سمبندھوں میں وستار بہت مہتوپورن ہے۔
ارادت الشعبیت والرسمیت بین البلدین،
دونوں دیشوں کے مدھیہ وشیش کر راجنیتک شیتر میں جو سمبندھ ہیں اس کی چھتر چھایا میں یمنی لوگوں کے ارادے سے نئی واستوکتا استتو میں آئے گی، تاکہ دونوں دیشوں کے مدھیہ سہکاریتا و سہیوگ کے لیے ادھک بھومی پرشست ہو سکے، اور یہ ایسی پرکریا ہے جس میں اتکرمن اور پریویشٹن جیسی رکاوٹوں کی سماپتی کے بعد گتی آئے گی۔ عبداللہ یوسفی، IRIB نیوز، سنا۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
امریکہ میں جہاں مت گڑنا جاری ہے وہیں ٹرمپ اور بائیڈن کے سمرتھکوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہیں۔ اس بیچ امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے وجیتا ہونے میں کوئی سندیہ نہیں ہے۔ جانکار حلقوں کا کہنا ہے کہ امریکی سماج ہنسا روپی جوالا مکھی کی اور آگے بڑھا ہے۔ ساتھ ہی حسن عباس،
کسی بھی کھن امریکہ کے نرواچت راشٹرپتی کے نام کی گھوشنا کی سمبھاونا ہے، لیکن مت گڑنا ہو رہی ہے۔ متوں کے حساب سے دونوں امیدواروں کے مدھ دوری بہت کم ہو گئی ہے اور مقابلہ کانٹے کا ہو گیا ہے۔ الیکٹورل ووٹ طے کریں گے کہ راشٹرپتی کون ہے، نہ کہ جنتا کے مت۔ ٹرمپ کاغذ پر لکھے ایک ٹیکسٹ کو آرام سے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ متوں کو چرانے کی انومتی نہیں دیں گے۔
They can try to steal the election from us.
کچھ ٹی وی چینل ان کے بھاشن کے پرسارن کو کاٹ دیتے ہیں۔
Iowa, Indiana, Ohio.
Okay, here we are again in the unusual position.
CNN کے مشہور اینکر کوپر کہتے ہیں کہ ٹرمپ سمجھ گئے ہیں کہ ان کا سمے بیت چکا ہے، لیکن وہ مان نہیں رہے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ امریکہ کی بھی گت بنانا چاہتے ہیں۔
And he wants to take everybody down with him, including this country.
بائیڈن کے گھر کے اوپر کے کشیتر کو اڑان نشید گھوشت کر دیا گیا ہے۔ یہ ان کے سمرتھکوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وجے ہونے میں سندیہ نہیں ہے۔
Dad?
ٹرمپ کے بیٹے ایرک ٹرمپ غصے میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کے ورشٹھ سدسیہ کیوں چپ ہیں۔
I love you very much.
ٹرمپ اور ان کے ساتھ رہنے والوں کے بیچ دوری اب دکھائی دینے لگی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سن 2016 میں پربھاوی راجیوں کے سرویکشن ان کی پرتسپردھی کو آگے دکھا رہے تھے، اسی طرح اس بار بھی وہ وفل رہے ہیں۔
Do you think we're stupid?
ٹرمپ کے وکیل کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے اور اس بات کی جانچ ہونی چاہیے کہ کتنے مرے ہوئے لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ ٹرمپ ایک لمبی قانونی لڑائی لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انتیم پریناموں کی ابھی گھوشنا نہیں ہوئی ہے، لیکن الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ٹرمپ اور بائیڈن کے سمرتھکوں نے کورونا کی جو کچھ مار جھیلی ہے اسے اب وہ باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ अमेरिका में अशांति व उपद्रव की आशंका से लोग अपनी दुकानों की सुरक्षा को मजबूत बना रहे हैं। ये आने वाले दिनों का भय है। न्यूयॉर्क से IRIB न्यूज के लिए कामरान नजफजादे।
भारत नियंत्रित कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भारत की केंद्र सरकार ने कश्मीर के संबंध में जो कुछ किया है वो उसे न तो स्वीकार करती है न करेंगी। उन्होंने कहा कि उस पर आपत्ति जताना उनका अधिकार है। श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन।
PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया आरम्भ करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जब भी PDP ने उन पॉलिसियों का विरोध करके सड़कों पर आने का प्रयास किया तो उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। जम्मू में अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर के साथ नई दिल्ली ने जो कुछ किया हम उसे न मानते हैं और न ही स्वीकार करते हैं, और हमारा यह मानना है कि हमारा यह हक है कि हम इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद करें। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
कश्मीर में निकले, श्रीनगर में निकले, हालांकि वहां ये इतना डर जाते हैं कि दफ्तर के बाहर भी कदम नहीं रखने देते हमको। अभी कदम रखा नहीं होता तो इनकी सारी वो फौज वगैरह पुलिस पहुंच जाती है। इतना डरते हैं, इतना डरते हैं कि ये BDP अगर कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट भी करना चाहे तो पहले ही उनको पकड़ के ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं। अरे आप कहते हो सारी दुनिया को हालात ठीक है कश्मीर में, हमने कंट्रोल किया, तो फिर डरते क्यों हो? ये मुझे बात समझ नहीं आती। इसलिए मैं आप सबको एक शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और सुरेंद्र चौधरी और बाकी जितने भी साथी हैं यहाँ पर, और पता नहीं राजेंद्र मन्हास है या वो बहुत अच्छा बोला मैं उसका।
इस बीच राज्य कांग्रेस के एक दिग्गज नेता और भूतपूर्व मंत्री ताज महीदीन ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि नई दिल्ली में जो मौजूदा प्रशासन है वो भाजपा की है और भाजपा अपने मैनिफेस्टो को आईन में तब्दील करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जो वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वही आईन बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है। उन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
जो BJP के मैनिफेस्टो में है उसी तरह आईन को बनाया जाता है, ये चीज पॉसिबल नहीं। जहाँ तक जब कोई मुल्क किसी मुल्क पे हमला करता है और उसकी जमीन हासिल करता है तो फिर उस जमीन को बांटता है, वो बांटी जाती है। हिस्ट्री देख लीजिए, जो भी हमलावर हुआ किसी स्टेट पे, स्टेट जीत ली या मुल्क जीत लिया, उसके बाद उन्होंने जमीनें बांट ली। वही हाल हो रहा है। हम तो वही चाहते हैं, जो हिमाचल में है वो मुल्क का हिस्सा है, हम भी मुल्क का हिस्सा, हमारे साथ अलग कहाँ। और 4-4 लाख कलाल जमीन लेनी कहाँ से लेंगे, लोगों से लेंगे, कहाँ से लेंगे, इतनी जमीन है कहाँ? क्या आप 4 लाख कलाल जमीन, क्या एक पूरा टाउन, पूरा गाँव ही, 10 गाँव एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो ले लेंगे? तो ये चीजें जो है ये अभी मुझे प्रोपेगेंडा दिखता है।
इस बीच जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाओं का क्रम भी जारी है। दक्षिणी कश्मीर के पांपोर में भारतीय सुरक्षा बलों और अलगाववादी छापामारों के बीच एक मुठभेड़ में एक अलगाववादी छापामार हताहत हुआ है, जबकि सुरक्षा बलों ने यह दावा किया है कि उन्होंने एक जिंदा अलगाववादी छापामार को गिरफ्तार भी किया है। इस ऑपरेशन के में जोरदार प्रदर्शन किए, जिसके बीच कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने के भी समाचार हैं, जिसमें एक की मृत्यु भी हुई है। परंतु पुलिस का कहना है कि उसकी मृत्यु अलगाववादी छापामारों की गोलियों का निशाना बनने से हुई है, परंतु स्थानीय लोगों ने इसका खंडन किया और उन्होंने दूसरा ही आरोप लगाया। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
यह तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवे में 41 मीटर बैंड बराबर 7,445 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा विज्ञान की डगर पर, उससे पहले आप सुनिए दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम पत्र संसार।
पत्र संसार। दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपने दीदी मरियम मेहरदादी और भैया कमर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे। और आपको पता है सदा की भांति आपके कुछ पत्र, ईमेल और कमेंट्स कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं। तो सबसे पहले भैया शुरू करें।
बिल्कुल बिल्कुल शुरू करें, हम तो सुनने के लिए बेचैन हैं, इंतजार कर रहे हैं पत्रों को और ईमेल को।
जी, तो ये ईमेल है आनंद मोहन बैन का। इन्होंने लिखा है, आज का कार्यक्रम सुना, सबसे पहले राष्ट्रगीत सुनाया गया, उसके बाद कुरान की तिलावत, उसके बाद हिंदी अनुवाद सुनाया गया, समाचार में प्रणव मुखर्जी के कोरोना संक्रमित होने का समाचार सुनाया गया। आपके हर दिन के कार्यक्रम काफ़ी रोचक और ज्ञानवर्धक होते हैं। भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर आपका तबसरा काफ़ी अच्छा होता है। कार्यक्रम कैसा सुनाई दे रहा है उसका एक ऑडियो फाइल भेज रहा हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद मोहन बहन जी। और जाहिर सी बात है, हमेशा मैं कहता हूँ और कहना भी चाहिए कि आप हमारे बहुत ही ज़्यादा पुराने श्रोता, और मैं तो ये सोचता हूँ कि शायद मुझसे भी ज्यादा पुराने हैं।
जी जी। और भैया आपको ये बता दें, जब भी आप ये कहते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है और वो दोबारा हमें मेल भेजते भी हैं और इसके बारे में बताते भी हैं।
क्योंकि ये जो है ना, ये है, ये मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे रेडियो तेहरान के ये श्रोता रेडियो हिंदी के आरंभ से पहले से थे।
जी बिल्कुल।
ये उर्दू सेवा सुनते थे और उसमें इनका पत्र आता था और उसके बाद फिर रेडियो हिंदी आरम्भ हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जाहिर सी बात है आप अनुभवी श्रोता हैं, बहुत ही ज़्यादा अनुभव आपको, और इसीलिए बहुत ही सटीक पत्र लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जी। दुर्गेश नागनपुरे ने जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से लिख भेजा है। पहले इनका सुविचार पढ़ूं या पत्र पढ़ूं उनका?
सब पढ़ दें, दोनों पढ़
दें। जी, सुविचार उनका यह है कि अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत इतनी ईमानदारी से करो कि आज जो हंस रहे हैं तुम्हारे सपनों पर, वो कल तुमसे मिलने के सपने देखेंगे। और पत्र यह है कि मैं प्रतिदिन आपकी वेबसाइट पर जाकर आपके सभी कार्यक्रमों को ध्यानपूर्वक सुनता हूँ, मुझे आपके सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। दीदी, सितंबर का 25 सितंबर का पत्र संसार कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। कार्यक्रम में आपने श्रोताओं के पत्र, ईमेल और टिप्पणी को जिस अनोखे अंदाज से पढ़ा, वो अंदाज मुझे काफ़ी पसंद आया। कार्यक्रम में आदरणीय आनंद मोहन जी का ईमेल बहुत मन भावक लगा। साथ ही इसी दिन की राजनीतिक चर्चा कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा इनको। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद। और
देखा आपने, इन्होंने भी आनंद मोहन बैन का
जी जिक्र किया है। अच्छी तो सबको पसंद आता है।
अच्छा जी।
तो देखें, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाहिर सी बात है जो सुविचार था ना एक,
जी जी,
वो बिल्कुल सही बात है। और देखें, सपने तो सभी देखते हैं दुर्गेश जी, सपने सभी देखते हैं, लेकिन असल में साकार सपने किसके होते हैं? उसके होते हैं जो जैसा सपना देखता है उसके हिसाब से काम करता है, तो उसका सपना साकार होता है। वरना ख्वाहिश और इच्छा तो सबकी होती है और सपना सब देखते हैं। उसमें कुछ लोग अगर कामयाब होते हैं तो वही जो आपने मंत्र बताया है कि उसके लिए उसी हिसाब से मेहनत करनी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे श्रोता हैं आप हमारे।
तो भैया अब लौटते हैं ईरानी संस्कृति से जुड़ी एक खबर की ओर। तो आज हम एक फिर से वो जो पुरातात्विक चीजें हैं मिल रही हैं उसके बारे में बता रहे हैं।
बताएं बताएं।
तो हाल ही में पार्थिव युग से संबंधित एक युवा लड़की का दूसरा कंकाल इस्फान शहर के एक पुरातात्विक पहाड़ी पर मिला है। प्राचीन स्थलों पर काम करने वाली पुरातत्व टीम के प्रमुख अली रेजा जाफरी ने बताया कि खुदाई में मिला यह मकबरा, जिसमें एक बड़े जार और एक घोड़े की रीढ़ पाई गई है, मेहर परंपराओं से संबंधित मकबरे की वास्तुकला को दर्शाती है। पूर्वजों के अवशेषों को बचाने के ऑपरेशन के दौरान पुरातत्वविदों ने पिछले 2 महीनों में पहाड़ी पर उल्लेखनीय खोज की है। 13 साल की लड़की के इस नए खोजे गए अवशेषों से पता चलता है कि ये जगह वास्तव में पार्थियान शासनकाल के मकबरे हैं और इतिहास के एक अज्ञात युग पर इस पर प्रकाश डालते हैं। अलीरदा जाफरी ने बताया कि पुरातत्वविद क्षेत्र में अपनी खुदाई जारी रख रहे हैं ताकि कुछ अन्य अवशेषों की खोज कर सकें। उन्होंने कहा कि पुरातत्वविद टीम को लगभग यकीन है कि एक बड़ा पार्थियन कब्रिस्तान यहाँ पर मौजूद है और इससे पहले भी एक और पार्थियन महिला का कंकाल जुलाई 2020 में उसी कब्रिस्तान से खोजा गया था।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाहिर सी बात है, ईरान एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता का स्वामी देश है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर निकलती रहती हैं और यही वजह है कि पूरी दुनिया से जो पर्यटक हैं और जो ख़ास तौर से जो अवशेषों में, प्राचीन अवशेषों में दिलचस्पी रखने वाले, पुरानी सभ्यताओं में रुचि रखने वाले लोग हैं, वो ज़रूर ईरान की यात्रा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
भैया, अब बारी है कमेंट्स की।
जी जी, कुछ कमेंट जो खबरों पे हमारे श्रोता करते हैं। जी बिल्कुल
जी। मैक्रा के खिलाफ बयान वापस नहीं लेंगे, भले सत्ता से हटना पड़े, पैगंबर इस्लाम के लिए जान भी देंगे, पुतिन को कदिरोव की दुटुक। इस पर शाजिया लिखती हैं, सच है ये कार्टून की कहानी जानबूझकर की गई थी क्योंकि ये योजना मुस्लिम समुदाय को भड़काने के लिए थी। वो इस्लाम और पूरे समुदाय को दोष देने के लिए एक हिंसक प्रतिक्रिया चाहता था। मुझे आश्चर्य नहीं है अगर उसने युवाओं को भड़काने के लिए ये किया, क्योंकि ये सभी जानियों के लिए आम बात है।
जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है शाजिया जी, बिल्कुल यही है। असल में देखें, जो इस तरह का काम किया जाता है, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा कही जाती है ये बात कि वहाँ पर जो कार्टून पैगंबर इस्लाम के अपमानजनक कार्टूनों का प्रकाशन हुआ, उस पर पूरे दुनिया में हंगामा हुआ था, इतना ज़्यादा विरोध हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर उसको दोबारा प्रकाशित किया गया और उसके बाद स्कूलों में और विभिन्न जगहों पर उसको बार बार दिखाया जा रहा है लोगों को। तो ये जाहिर सी बात है, जिसे कहे कि जब इस तरह के काम होंगे, भड़काया जाएगा, तो भड़काऊ जब कदम होता है तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ जोशीला कोई या जो कुछ जो कट्टरपंथी लोग हैं वो इस तरह की हरकत कर देते हैं, तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है एक प्रोपेगेंडे का पूरा जो है मिल जाता है मौका और लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ये जो कार्टूनों की बात है, ये इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है और ये उस फ्रांस में है कि जहाँ आप होलोकॉस्ट पर सवाल नहीं कर सकते। अगर किसी ने सवाल किया कि होलोकॉस्ट क्या सच्चाई है या नहीं है, तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। रॉजर गैरोटी, जो वहाँ के दार्शनिक बहुत ही मशहूर थे, अब तो उनका निधन हो गया, उन्होंने इस पर एक किताब लिखी थी कि होलोकॉस्ट है कि नहीं है, तो उन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो इस तरह की चीज़ें, उन पर मुकदमा यानी चला था। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि आप एक ऐतिहासिक घटना है जो कि बिल्कुल बुद्धिजीवियों का अध्ययन का सब्जेक्ट होता है, उस पर आप अध्ययन नहीं कर सकते। जो है बस वही है, जो कहा जाता है वही ठीक है, वही माने। लेकिन 1,800,000,000 जो है लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाना जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हदें ये नहीं है। तो जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा मैं बोल गया, तो थोड़ा सा टेस्ट बदलने के लिए, मजा जो है, स्वाद मुंह का जो है बदलने के लिए, अगर वो आप कुछ हमारे किसी श्रोता का विचार सुना दे उसकी मधुर आवाज में, तो जो है जाहिर सी बात है अच्छा लगेगा। थोड़ा हम लोग ही बोल रहे हैं कब से और हमारे श्रोता हम ही को सुन रहे हैं। कौन है तो किससे बात की?
उत्तर प्रदेश से ये हैं सैयद मोहम्मद मुर्तजा आबदी।
जी सैयद मोहम्मद मुर्तजा आबदी, तो चले सुनते हैं क्या कहा उन्होंने।
हम सैयद मोहम्मद मुर्तजा आबदी यूपी इंडिया से हूँ। हम ईरान के बारे में बहुत ही बचपने से सुनते चले आए कि एकदम वहाँ पे रहन सहन माहौल, एक इस्लामी निज़ाम बहुत ही बेहतरीन, जिसकी तारीफ की जितनी तारीफ की जाए कम है। एक वाहिद मुल्क ऐसा है जो दुश्मन के मुकाबले में डट के खड़ा हुआ है, इतनी किसी के सपोर्ट की के बगैर अपने बलबोते खड़ा हुआ है। और यहाँ तक कि और जो दूसरे मुल्क हैं उससे मदद भी कर रहे हैं।
जी तो बहुत बहुत शुक्रिया आबदी साहब जी। तो अभी थोड़ा सा टाइम है
जी, जी तो एक कमेंट शामिल करते हैं।
हाँ बताएं।
सऊदी अरब ने इसराइल को मान्यता दी तो ईरान या कतर नहीं बल्कि सऊदी क्राउन प्रिंस की हत्या शाही परिवार के हाथों होगी, अल रशीद। इस पर मोहम्मद हुसैनी लिखते हैं, सऊदी अरब ने पहले से ही इसराइल के साथ टेबल के नीचे संबंध सामान्य कर लिए हैं और यही कारण है कि इसराइल सही कीमत के लिए सऊदी अरब को न्यूक्लियर वेपन बनाने में मदद कर रहा है ताकि इसराइल फिर पाकिस्तान पर दोष मढ़ेगा। ये सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था के लिए किए गए कार्यों का कारण है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाहिर सी बात है आजकल जो लहर चली है इसराइल से संबंध बनाने की, वो उसके पीछे कहते हैं कि सऊदी अरब का ही हाथ है और वो विभिन्न देशों अरब देशों को तैयार कर रहा है इस पर कि वो इसराइल के साथ संबंध बनाए ताकि ये एक सामान्य सी बात हो जाए और उसके बाद वो भी बनाए। तो जैसा कि देखा आपने, सुना ही होगा खबरों में कि सूडान को संबंध बनाने के लिए काफ़ी भारी रकम सऊदी अरब ने अदा की है और उसके बाद सूडान ने संबंध स्थापित कर लिया इसराइल से। उसी तरह यूएई और बहरैन जो जाहिर सी बात है दोनों ही छोटे भाई हैं सऊदी अरब के और सऊदी अरब को बड़ा भाई समझते हैं, इन दोनों देशों ने भी इसराइल से संबंध बना लिए। तो ये सब कुछ आखिर में उसी के लिए हो रहा है कि ये ऐलान किया जाए। संबंध तो जाहिर बात है बहुत पहले से थे और ये जो मिडिल ईस्ट है, पश्चिमी एशिया जो सही नाम है उसका, वहाँ इसराइल एक रूप में और सऊदी अरब दूसरे रूप में, दोनों ही जो अमरीकी साम्राज्यवाद है और जो पश्चिमी शक्तियों का जो एजेंडा है इस इलाके के लिए उस पर ही लोग काम करते हैं। ये दोनों सरकारें जो हैं, चाहे इसराइल हो चाहे सऊदी अरब हो, अलग अलग तरह से, तो इसलिए ये लोग तो एक ही गुट के और एक ही गठबंधन के और एक ही मोर्चे के हैं दोनों तरफ के लोग। लेकिन अब ये इन्होंने तय किया है कि साहब इसको ऐलान कर दिया जाए, सबके सामने ला दिया जाए संबंध, तो इसलिए अब सामान्य बनाया जा रहा है।
तो भैया अभी कार्यक्रम का समय तो समाप्त हो गया।
समाप्त हो गया तो जाहिर सी बात है पत्र वगैरह कुछ पता होता बताने का है समय एकदम नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात अनुमति लेते हैं हम आपसे अगली भेंट और अगले पत्र संसार तक के लिए कमर अब्बास और मरियम मेहरदादी को अनुमति दें।
खुदा हाफिज़।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। विज्ञान की डगर।
दोस्तों, कार्यक्रम विज्ञान की डगर के कनेक्टर के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहरदादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज भी हम आपको ईरान सहित दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले तरक्की के बारे में बताएंगे।
ईरान में शिराज की मेडिकल और औद्योगिक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता संयुक्त कोशिश से कार्बन नैनो ट्यूब और लेजर से कैंसर के सेल को खत्म करने में सफल हुए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा स्किन या त्वचा का कैंसर होता है। कैंसर के कुल केस का 75% हिस्सा स्किन कैंसर से विशेष बताया जाता है। ज्यादा वक्त तक धूप में रहने से सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें इंसान के शरीर में समा जाती हैं, जिससे स्किन कैंसर होता है। हालांकि स्किन कैंसर के ज्यादातर केस का इलाज हो जाता है, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज्यादा लोगों को होती है, इसलिए इस बीमारी के संबंध में लोगों में चिंता भी ज्यादा होती है।
इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले एक शोधकर्ता के अनुसार, इस शैली में कार्बन नैनो ट्यूब को, जिस पर पॉलीमर का बायोडिग्रेडेबल कवर चढ़ा होता है, उसके बाद कवर वाले इन नैनो पार्टिकल्स को ट्यूमर में इंजेक्ट करते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब में इंजेक्ट हुई लेजर किरण के रेडिएशन से ये नैनो पार्टिकल्स लेजर की रोशनी को गर्म कर देते हैं। यही गर्मी कैंसर के ट्यूमर को खत्म कर देती है। कार्बन नैनो ट्यूब रोशनी को अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत रखते हैं और इलाज की शैली के लिए उचित विकल्प समझे जाते हैं। कैंसर के इलाज की शैली से डॉक्टरों को बहुत सहूलत हो गई है। इससे बहुत तेजी से इलाज होता है और कैंसर के ऊतकों को तोड़ने वाली दूसरी शैलियों के मुकाबले में इस शैली के साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं।
ईरानी वैज्ञानिकों ने अमरीकी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से 20 सेकंड में कैन फूड या डिब्बा बंद पदार्थ में मौजूद खतरनाक पदार्थों का पता लगाने में सफलता हासिल की है। आज के भाग दौड़ भरे दौर में, जब शिक्षा और काम की वजह से खाना पकाने के लिए वक्त कम मिलता है, तो खाना बनाने का एक आसान तरीका कैन फूड या डिब्बा बंद पदार्थ का इस्तेमाल है। खाना और दवा क्षेत्र के शोधकर्ताओं के अध्ययन ये दर्शाते हैं कि लंबे समय तक कैन फूड खाने से इंसान अनेक तरह की मुश्किलों का अनुभव करने लगता है।
इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले एक शोधकर्ता के अनुसार, कैन फूड के डिब्बे के उत्पादन में एक खतरनाक पदार्थ का इस्तेमाल होता है, जिसे बिस्फिनल ए कहते हैं। इस शोध का लक्ष्य कैन फूड और प्लास्टिक बोतल के पेय पदार्थ में बिस्फिनल ए पदार्थ को मॉनिटर करना है। इससे पहले की शैली में इस काम के लिए ज़रूरी मशीनों से लैस लैब की ज़रूरत पड़ती थी, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता था। इसके बावजूद इस शैली में उच्च स्तर की सूक्ष्मता नहीं थी। इस शोध कार्य में एक बायोसेंसर की मदद भी ली गई है, जो सस्ता होने के साथ साथ बहुत तेज़ी से इस खतरनाक पदार्थ का पता लगा लेता है, जो पिछली शैलियों में इतनी जल्दी और कम कीमत में मुमकिन नहीं था।
ईरान के रोयान रिसर्च सेंटर की स्पेशलिटी सेवा विभाग के उप प्रमुख के मुताबिक, इस सेंटर के फर्टिलिटी केंद्र में 2500 गैर ईरानी जोड़ों का इलाज हुआ और उन्हें संतान जैसी नेमत हासिल हुई। रोयान में बांझपन का इलाज करने वाला केंद्र 25 साल पुराना है। विगत में ये केंद्र यज्द शहर में स्थित था और अब तेहरान में मौजूद है। रोयान रिसर्च सेंटर के फर्टिलिटी विभाग शुरू होने से पहले ईरानी जोड़े इलाज के लिए यूरोपीय देशों, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जाया करते थे। जब से देश में इस तरह की मुश्किल दूर करने वाला सेंटर खुला है, ये सेंटर बहुत कम वक्त में आत्मनिर्भर हो गया। इस सेंटर में ईरानी जोड़ों के साथ साथ दुनिया के सुदूर क्षेत्रों से आने वाले जोड़ों का भी इलाज किया जाता है। ईरान में इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए सांस्कृतिक तथा धार्मिक मामलों सहित नैतिकता व मेडिकल एथिक्स के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। ये शैली अरब और मध्य एशियाई देशों की संस्कृति के अनुकूल है। इसी तरह रोयान इंस्टीट्यूट में इलाज का खर्च यूरोपीय और अमरीकी केंद्रों के मुकाबले में कम है। इसी वजह से पड़ोसी देश पूर्वी एशियाई व यूरोपीय देशों के अलावा अमरीकी जोड़े भी यहाँ इलाज के लिए आते हैं। ईरान में इनफर्टिलिटी के इलाज पर खर्च यूरोप, तुर्की और यूक्रेन जैसे देशों में होने वाले खर्च का एक तिहाई है।
अमरीकी वैज्ञानिकों ने क्लिनिकल ट्रायल से पहले पहली बार दिल की मांसपेशियों से जुड़ी बीमारी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का भ्रूण में ही इलाज करने में सफलता हासिल की है। ये जेनेटिक म्यूटेशन से जुड़ी बीमारी है। इस बीमारी के इलाज से इस बीमारी से बाद वाली नस्लों को बचाया जा सकता है। जेनेटिक सुधार करने वाली मशीन क्रिस्पर कैस 9 से एड्स और नवजात की कमजोर मांसपेशियों की बीमारी डिस्ट्रॉफी के इलाज की उम्मीद बढ़ी है। इस मशीन का उद्देश्य बीमारियों की पूर्व रोकथाम करना है। इस प्रोजेक्ट के लीडर के अनुसार ये शोध जेनेटिक सुधार की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा समझने में मददगार साबित हो रहा है।
फ्रांस के पास्चर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों को एक शोध में ये पता लगा कि कुछ स्टेम सेल्स ऐसे होते हैं जो मरे हुए लोगों में भी 2 हफ्ते से ज़्यादा सोई हुई हालत में बाकी रहते हैं, जो फिर से एक्टिव हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं और नए उपयोगी सेल बना सकते हैं। इस शोध से पता चलता है कि ये मुद्दत लगभग 1 से 2 दिन होती है। इन वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ऊतकों के स्टेम सेल मौत जैसे प्रतिकूल हालात में कुछ समय के लिए जिंदा रहते हैं और इस काम के लिए उनके मेटाबॉलिज्म को ऐसा बना देते हैं ताकि कम ऊर्जा बर्बाद हो। इसी तरह बोन मैरो या हड्डी के गूदे के स्टेम सेल के अध्ययन से पता चला है कि इसके स्टेम सेल मौत के बाद 4 दिन जिंदा रहते हैं। इसीलिए नैतिक और कानूनी शर्तों के पालन के साथ सेल के इस स्रोत को इस्तेमाल करके स्टेम सेल के डोनेशन के क्षेत्र में कमी को दूर किया जा सकता है।
फ्रांस के वैज्ञानिकों ने वनस्पति विज्ञान की जानकारियों की समीक्षा से एक ऐसी वनस्पति का पता लगाया जो वाटर लिली की तरह है। ये वनस्पति 14 करोड़ साल पुरानी है। फ्रांसीसी वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वनस्पति सभी फूलदार वनस्पतियों की उत्पत्ति का स्रोत है। इस वनस्पति के फूल का कोई भी जीवाश्म नहीं मिला है, लेकिन पेरिस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक और उनके सहयोगी वनस्पतियों के विकास के मॉडल को जानकारियों के विशाल स्रोत से मिलाकर इस खोज तक पहुंचे। वाटर लिली जैसी नज़र आने वाली इस पहली वनस्पति के पत्तों की तरतीब या सीक्वेंस बहुत सादा है और उसमें मेल व फीमेल होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पहली फूलदार वनस्पति का पर्यावरण पर गहरा असर था।
दोस्तों, कार्यक्रम के इस भाग में सार्थक और नकारात्मक सोच के बारे में उस्ताद खैर अंदीश के विचार हम पेश करने जा रहे हैं। उस्ताद खैर अंदीश कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी इंसान ने कारनामा किया है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसका आरंभिक बिंदु सोच है। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े हवाई जहाज, पूरे दुनिया को रोशनी देने वाला बिजली का विशाल नेटवर्क अपने मौजूदा रूप में आने से पहले सोच विचार की हालत में था।
सार्थक सोच इंसान के वजूद में सार्थक ऊर्जा पैदा करती है। नकारात्मक सोच इंसान के वजूद में न सिर्फ ये कि नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है, बल्कि उसके वजूद को ढेर कर सकती है। सार्थक सोच विचार को गर्मी से परिभाषित करते हैं। यही वजह है कि ईश्वरीय धर्मों ने सबसे पहले सोच को सार्थक रखने की ताकीद की है। दूसरी ओर बुरी सोच को मन से निकालना बहुत ज़रूरी है। जब सुबह उठिए तो अपनी सोच को सार्थक रखिए। हर चीज को आशावादी निगाह से देखिए, प्रकृति व सृष्टि को सार्थक नजर से देखिए, ईश्वर की कृपा की ओर से आशावान रहिए, बुरे विचार व ख्याल से बचे। ईश्वर की कृपा के प्रति आशावान ही उसकी नेमत से जुड़ा होता है। नाउम्मीद व निराशा बहुत बड़ा पाप है, तो ये कहना सही है कि सार्थक सोच एक तरह से खाने की तरह है।
सार्थक सोच रखने की पहली शर्त यह है कि नकारात्मक ख्यालों को पहले मन से निकाल दिया जाए। हर चीज में सार्थक पहलू ढूंढने की कोशिश की जाए, यहाँ तक कि अगर कोई हादसा या दुर्घटना हो जाए तो उसमें भी किसी तरह से सार्थक पहलू निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर चाहे तो जाहिर में दुर्घटना नजर आने वाली चीज में भी भलाई छिपी हो सकती है।
ये सोच का पहलू है। सोच को सकारात्मक बनाने में सार्थक व्यवहार का रोल होता है। सार्थक व्यवहार के लिए गर्म तासीर वाली चीजें खानी चाहिए। गर्म तासीर की चीजें खाने वाले सकारात्मक सोच वाले होते हैं। अगर सुबह सवेरे खुश खुश उठना चाहते हैं तो रात में गर्म तासीर वाली चीज खाएं। गर्म तासीर की चीजें खाने से जिस्म में गर्म फ्लूड या द्रव बनता है। गर्म तासीर वाली चीज खाकर इंसान जब सुबह उठता है तो ऊर्जा की वजह से उसका मूड फ्रेश होता है। इसी तरह रात को सोते वक्त गुलाब का फूल सूंघ कर सोएं, या सुबह के वक्त बेला या चमेली या रजनीगंधा का फूल सूंघें, या गर्म तासीर वाली खुशबू सूंघें, क्योंकि गर्म तासीर वाली खुशबू से दिमाग में गर्मी आती है, और जब दिमाग में गर्मी आती है तो सोच सार्थक होती है, नकारात्मक सोच की संभावना खत्म हो जाती है। ये प्राकृतिक तरीके हैं नकारात्मक सोच को दूर करने के। दोस्तों, आशा है आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। हमें अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है और सभा के अंत में पेश आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान और वेनेजुएला ने परस्पर संबंधों में विस्तार पर बल दिया। ईरान ने कहा है कि इस्लामी जगत पश्चिमी तट के विलय की अनुमति कदापि नहीं देगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में विवाद जारी, बाइडेन जीत के बेहद करीब पहुंचे। और भारत में उत्तर प्रदेश सरकार ने CA और NRC प्रदर्शनकारियों को इश्तिहारी मुजरिम घोषित कर दिया। तो श्रोताओ, इसी के साथ हमारी ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। अनुमति दें, खुदा हाफिज़।